بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة. من ده بس تمام مؤمنين مؤمنات مرومين تمام علماء تمام شهداء اپنے مرومین کو میرے مرومین کو استاد سعید سبت جعفر شہید قاسم سلمانی شہید عارف حسینی اور جتنے بھی مرومین ہیں حاضرین جو بھی موجود ہیں ان کے اور تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على امام زمان علیہ السلام کے لیے تو بس سلامات ہے. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا سيدنا ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلی محمد وجل فرجهم وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. ہمارے گفتگو جو ہے وہ شرح حدیث عنوان بصری، جو خود ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور اس کی حدیث کی جو ہے وہ شرح کی گئی ہے، تشریح کی گئی ہے آیت اللہ محمد باقر تحریری حفظ اللہ کی کتاب ہے. اسی کے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں. ہماری گفتگو لاسٹ جو تھی وہ کچھ چیزوں کچھ ٹاپک مقدمات سے کور کرتی تھی. آخر میں جہاں پہنچے تھے وہ تھی کہ انسان کو جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں، امور میں، چیزوں کی جو ہے وہ تدبیر کرے، یعنی اس کو تھوڑا سا طریقے سے سسٹمیٹک کرے کہ اس کو بہرحال زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے. کیونکہ بہرحال ہم نے روایات کی روشنی میں دیکھا تھا کہ عقل مند آدمی وہی ہے جو پہلے سے چیزیں کرتا ہے تاکہ اس کو بعد میں پشیمانی نہیں ہوتی. گفتگو بہرحال غالباً یہاں رکی تھی کہ جو انسان کی زندگی میں اٹریکشن ہوتی ہے یا جن چیزوں سے وہ وابستہ ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے اس کو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو قطع تعلق کرنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے جس کی طرف وہ بہت اٹریکٹ ہوتا ہے اس سے دور کرنا پڑتا ہے. اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ دنیا چھوڑ دے یا کنارے بیٹھ جائے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال جو سیر و سلوک کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہوتی ہے وہ اس کی ہارٹ کی یا اس کے قلب کی اٹیچمنٹ ہے کہ جس چیزوں سے وہ اندر سے جڑا ہوتا ہے. یہ چیزیں اس کو اصل میں زندان میں ڈال دیتی ہیں، یعنی اندر کے زندان میں اس کو قیدی کر دیتی ہیں، اور پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس عالم میں جو عالم ہے بہرحال دوسرا عالم ہے اور اسپرچولیٹی اور معنویت کی طرف چلنا ہے، تو اس کے لیے بہرحال قدم اٹھانا جو ہے نا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ اس دنیا سے جو ہے وہ ڈی اٹیچ اپنے آپ کو نہ کر پائے. بہرحال قرآن کی آیات کا بھی غالباً آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کے وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا قَصِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِقُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. پروردگار جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے اس کے اندر کہ جو بھی خدا کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اور زمین میں اپنی جہاں پہ بھی اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ کوشائش ہوگی، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، اور ہر جو بھی ہے جو خدا کی راہ میں اور پیغمبر کی راہ میں اور ان کے उनके लिए ये नियत कर हिजरत करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और बस अगर उसको मौत भी आ जाती है तो उसका जो अजर है वो खुदा के पास है। अब ये जो मुहाजरत है, बहरहाल ये मुहाजरत फिजिकल भी है, उलमा इकराम इसको मुहाजरत बताते हैं। ये मुहाजरत जो है वो दूसरी वाली भी है, यानी एक इंसान एक आइडियोलॉजी एक थॉट एक अकीदे पर था और वो दूसरी तरफ बढ़ा है। तो बहरहाल ये जहमत और मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन इसका अजर जो है वो खुदावंद मुताल के पास है। और खास तौर पर जब इंसान चाहता है कि वो इन कमालात इल्मी और मानवी में जो है वो हासिल करे, चीजों को कस्ब करे, तो फिर उसको जाहिर है अपने जो मादी ताल्लुकात है उनको महदूद करना, यानी उनको लिमिटेड करना पड़ता है, और रजा इलाही के लिए कदम को जो है वो बढ़ाना पड़ता है। और सारी खूबियां जो है वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है। इमाम फरमाते हैं कि सारी खूबियां जो है वो एक एक घर में हो और उसकी जो चाबी है वो है जुहद दर दुनिया की, जहाँ हमारी गुफ्तगू जो है वो, मेरे ख्याल में गालिबन हमने अपनी गुफ्तगू को शायद इसी जगह पर जो है वो इख्तिताम किया था। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुहद के लिए जो है वो जो बहुत मतलब मिनिमम जो जुहद के लिए है वो ऐसे बयान किया गया है कि दुनिया से इंसान की आरजुएं जो है वो कम हो जाए और हर नेमत पर शुक्र हो और परहेज करे मुहरमात इलाही से, यानी अपने आप को हराम से बचाए। इन तीन चीजें मिनिमम जोहद के लिए डिफाइन की गई है। एक इंसान अपनी आरजुओं को दुनिया में कम कर दे, छोटा करे, हर नेमत पे शुक्र करे। दो, तीसरी चीज जो है वो जो चीजें हराम है उससे परहेज करे। ये तीन चीजें बहरहाल इंसान इसकी प्रैक्टिस करे, आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस करे, बहरहाल वो जोहद की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है। इसी तरह जो उसका बड़ा दर्जा है, यानी ये तो मिनिमम बताया, जो बड़ा दर्जा इंसान उसमें ये होता है कि इंसान उसको हासिल करने के लिए उसको इस तरह फरमाया गया कि जुहद के मायने ये नहीं है कि इंसान जो है वो अपने ऊपर हलाल को हराम कर दे, बल्कि उसके लिए है कि उसको ये इत्मीनान होना चाहिए कि जो खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा बेहतर है जो है वो अंजाम दे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि भाई मैं ये नहीं खाऊं या वो नहीं खाऊं, ये बड़ा हलाल भी है तो मैं इसको इस तरह कर दूं, मैं कम खाऊं, मैं चीजों को तर्क कर दूं, हलाल चीजें जायज चीजें भी मौजूद हैं, मैं उनको पहाड़ों में चला जाऊं। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी था, ऐसा लोग किया करते थे। रसूल खुदा ने बहरहाल नाराज हुए और उनसे कहा कि ये इस्लाम नहीं है, बल्कि जो चीजें दी हैं उसी के अंदर इंसान जो है वो अपने आप को जो है वो परहेज कर, यानी जो चीज खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा बेहतर है तो उसी को जो है वो हासिल करें। बहरहाल जिंदगी में कोशिश करें कमालात नफसानी जो भी उलूम इल्म उससे ज्यादा रिलेटेड है, दीन के मारिफ को इल्म तौहीद को हासिल करें, और इस जो भी हासिल करे उस पर ये ना करे कि शायद बहुत सेटिस्फाइड हो, बल्कि खुदावंद नजदीक यानी अपने आप को ये सोचे कि जो खुदा ने मुझे दिया है, बहरहाल ये सब मुझे खुदा ने दिया है, जो भी मुझे आता है ये सब खुदा की तरफ से है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, और इसी तरह जो है वो आगे की तरफ बढ़े तो बहरहाल इंसान चीजों को हासिल करता रहेगा और बहरहाल एक जगह पहुंच जाएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा जुहद है वो जो है वो आशकार हो, यानी खुद इंसान अगर एक कोई अपने लिए काम कर रहा है, खुदा के लिए काम कर रहा है, अल्लाह के लिए कि वैसे मैं ये नहीं करता मैं वो नहीं करता, जरूरी नहीं है कि उन सारी चीजों को जो है वो आशकार करे। जुहद की निशानी यही है कि जब जाहिद जो है वो लोगों से फरार करता है, यानी नहीं चाहता कि लोगों को पता चले उसका अखलाक क्या है उसका किरदार क्या है। मिसाल के तौर पर एक चीज जो जाहिर हो रही है वो तो जाहिर हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा है मतलब मैं यूं करता हूँ मैं ये करता हूँ मैं इतनी इबादत करता हूँ मैं इतनी दुआएं पढ़ता हूँ मैं ऐसा करता हूँ, वो नहीं चाहता, जाहिर नहीं चाहता। जाहिर चाहता है कि जो है वो उसकी कोई चीज ना हो ताकि बाहर उससे कहीं इंसान गलत फायदा ना उठाए, और जब भी जो है वो लोग उसके करीब आए वो उनसे दूर जाता है। खूब ये बिल्ट इन है, यानी अब खुदा नखास्ता, बहरहाल इंसान मुश्किलात का शिकार होता है। बहरहाल हम आगे जाएंगे तो उसकी तरफ भी इशारा होगा। इंसान जो है वो बाज़ औक़ात नफ्स जो है वो उसको धोखा देता है, नफ्स उसको उसके साथ खेलता है, उसको दिखाना पड़ जाता है। बाज़ औक़ात कुछ चीजें वो पता तो कुछ चीजें वह है इस्लाम के अंदर जो बहरहाल आप उसका इजहार कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए, लोगों को आगे लाने के लिए। लेकिन बहुत सी जगहों पर बहरहाल सख्त है मामला, बहुत बारीक होता है। नहीं पता होता कि इंसान को कौन सी चीज जो है वो धोखा दे रही है, कौन सी चीज जो है वो दिखा रहा है, कौन सी चीज शायद वो समझ रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ लेकिन हो सकता है कि उसके लिए वो नुकसानदेह हो। मैं बहुत माजरा चाहता हूँ, बार बार लोग मैसेज कर रहे होते हैं 10 के दरमियान में, तो मेरी कंसंट्रेशन जो है वो खराब हो जाती है क्योंकि बार स्क्रीन पर जो है वो पॉपअप हो जाता है। तो बेहतर है कि बहरहाल जब 10 खत्म हो जाए तभी जो है वो आप मैसेज करें, और बहरहाल जो तरीका है सवाल पूछने का और रिलेवेंट सवाल जो है वो दर्स के अंदर पूछे। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद व अजर फराजा। हो अब ये जो बहरहाल इंसान जाहिद होता है, जोहद की तरफ बढ़ता है, उसी के लिए जरूरी है कि बहरहाल उसको मुरब्बी की जरूरत होती है, ऐसा जो उसकी तरबियत कर सके, उसको लेके चल सके इस रास्ते पर। मिसले मारिफत जो है दरियाए नील की तरह है, और उसको जो है वो इंसान को जरूरी है कि उसको हासिल करे, अपना मकसद उसको करार दे। और ये तभी मुमकिन है कि जब वो मुख्तलिफ अट्रैक्शंस के साथ, जहाँ उसका दिल हो अटैच हुआ हुआ है, उसको ताल्लुक को तोड़ना पड़ेगा। और यानी एक तो इंसान जाहिल होता है, यानी जाहिल से मुराद है कि उसको उसको जहल है, यानी उसको इल्म नहीं है। और एक तो यह है कि नहीं जानता, और क्योंकि उलूम से दूर है। खुद दोनों चीजें बहरहाल मुख्तलिफ हैं। बाज़ अगर इंसान किसी उलूम या इल्म से भी अटैच है और उससे भी उसका दिल बंद हो जाता है, कि बहरहाल बहुत नाजुक बहुत बारीक है कि हम इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। बहरहाल हम आगे की तरफ चले। हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्ला जो है वो बयान कराते हैं कि अगर इंसान तहजीब ना हो उसके कामों में, उसकी जिंदगी में तहजीब नफ्स ना हो और ना कर सके, तो इल्म तौहीद भी जो है ना उसको फायदा नहीं पहुंचा सकता। अल इल्मु हुवल हिजाब अल अकबर, इल्म जो है वो हिजाब अकबर बन जाता है, यानी खुद इल्म हिजाब बन जाता है। यानी इंसान आप सोचें कि खूब ये रास्ते इस रास्ते में मुश्किलात बहरहाल बहुत हैं, क्योंकि बहरहाल इल्म जो है वो ऐसा है कि बस अब एक आपने कहीं पर एक नॉलेज या कंफर्मेशन जो है वो रखी हुई है, चाहे वो बहरहाल तौहीद का बेहतरीन इल्म है, चाहे क्यों ना हो कि इंसान के जहन में, इंसान के कल्ब के अंदर हो, अगर इंसान मुहज्जब नहीं है, उसकी तरबियत नहीं है, तो वो इल्म से खुदा से दूर कर सकता है। ये आगे हम चलेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह जो होता है कि इल्म जो है वो मुश्किल बगौल जो है वो हाफिज जो शायर है वो फरमाते हैं कि बाब मुद्दई मगुयत इसरार इश्क को मस्ती, यानी तुम इसका दावा नहीं करो, मुद्दई ना बनो कि मैं इसरार इश्क है और मैं मस्ती में हूँ, था भी खबर बे मेरी दर रंज खुद परस्ती। यानी तुम खुद दावा करोगे तो तुम तो असल जब मरोगे तो खुद को खबर नहीं होगी और खुद परस्ती में जो है वो मर जाओगे। बहरहाल यहाँ पर जरूरी है कि इंसान जो एक नुकता, बहरहाल इसमें हमें यही समझ में आता है कि इंसान जो है वो खुद इजहार नहीं करता, और तरबियत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इल्म के साथ साथ, वरना इंसान के लिए इल्म जो है वो मुश्किलात का शिकार बन जाता है। आइम अलैहिस्सलाम भी जो है वो ऐसी तरबियत पे हमें जो है वो देते हैं कि हम जो अमल करें, ताकि हम इन उलूम जाहिरी जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं वो हमें मغرور ना कर दे, और हम असल उलूम की तरफ जो असल मारिफ है हकीकी इल्म है उनकी तरफ मुतवज्जे हों। जैसे कि हशाम बिन हकम जो है बहुत लतीफ रूह थी और फितरत पे आमादा थे, और जब अहले बैत अलैहिस्सलाम के उलूम के आगे उन्होंने तवाजो के साथ अपने जानू रखे, तो फिर देखें कि बहरहाल क्या उनके साथ हुआ, किस मकाम पे जो है पहुंच गया। बहुत सारे और लोग जिसमें इब्ने हबिल आवाजा थे कि जिनके हिजाब जो है वो मादी थे, जिस पे वो गर्क हुए थे, नहीं पॉसिबल हुआ कि वो इमाम का जो भरल रहमत है और उसे इस्तफादा करें, बल्कि कुफ्र और मादी के अंदर जान दे दी। ये बहरहाल ये दो मिसालें जो है वो दी गई हैं। दोनों के बारे में ऐसी किताब में बहरहाल थोड़ी सी डिटेल है। हिशाम बिन हकम जो है वो एक जवान आलिम हैं, बहुत जाहरी तौर पर भी खुश फहम थे, खूबसूरत भी थे। कहते हैं कि पहले शुरू में उनका नजरिया सही नहीं था तौहीद के बारे में, लेकिन जब उसका इजहार किया आइम्मा अलैहिस्सलाम ने तो उनको रद्द किया कि तुम्हारा नजरिया सही नहीं है। एक दिन हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अल्लाह के नामों का इस्म इलाही उनसे पूछे। हजरत ने जो है वो इल्म तौहीद के चश्मों जो है उनके ऊपर खोले, फरमाया कि जिस तरह मतलब को पहचाने हो या समझे हो, क्या तुम उस तरह काफिरों और मुशरिकों से दिफा कर सकते हो, यानी उनके मुकाबले में ये जो इल्म हासिल किया उनके उनके साथ मुनाजरा ये बहस कर सकते हो? तो उनका हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर वो हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बेहतरीन शागिर्दों में करार पाए और बहरहाल उनमें मसीहों के साथ और कुफर के साथ उन्होंने बहुत बहस और मुनाजरे किए और लोगों को इस्लाम की तरफ हिदायत दी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो है वो उनको बहुत ज्यादा खुद उनकी तारीफ करते हैं, और अगर हम ज्यादा इसके बारे में देखना चाहते हैं तो हमें रुजू करना चाहिए। किताब जो है वो तौहीद सुदूक के सफा नंबर 220, 274 और 295 पर। दूसरी शख्सियत के जिसके बारे में बहरहाल आगा तहरीरी ने यहाँ पर इरशाद फरमाया, क्योंकि दोनों चीजें, एक है कि इंसान तवाजो है, इंसान अपने आप को आमादा करता है, इंसान झुकता है तो वो उसकी कैफियत क्या बन जाती है, और दूसरा शख्स जहाँ कुफर है, जहाँ पर तकब्बुर है, तो वो क्या होता है। इब्ने अबिल आवाजा जो है वो हसन बसरी के शागिर्दों में से है, वो एक मुद्दत के बाद मुर्तद हो गए, अय्याम हज में मक्का गए और हाजियों पर मजाक उड़ाने लग गए, और एक दिन जो है वो इमाम जाफर सादिक के सामने आए और फिर उनसे मुनाजरा किया और उनके अंदर जज्ब हो गए, यानी इमाम की मानवियत में जज्ब हो गए कि और हजरत है, और इस तरह मैं खुद इमाम की तारीफ करें कि ये इंसान आदि नहीं है बल्कि ये बहुत रूहानी है और ये दुनिया से, यानी ये इंसान के कल्ब और जिसम हर चीज से आगा है, क्योंकि रोई लतीफ है और छुपी हुई है। अलबत्ता इन सब, यानी ये सारी चीजें जो बताई गई उसके बराबर में, उसके बावजूद जो उसका बातिल था उससे उन्होंने हाथ नहीं उठाया, और नतीजा ये हुआ कि एक दफा एक मनाजरे में इमाम जाफर सादिक थोड़ी सी अपने कल्ब के अंदर शिद्दत ली और फिर पलट आए और फिर हालत कुफर में और जलालत में जो है वो जान दे दी गई। इसमें भी बहरहाल तौहीद सुलूक सफर नंबर 126 पर और बाकी सफों के अंदर इसके बारे में बताया गया। खुलासा, अगर इंसान के कल्ब में मुश्किल हो, कल्ब सही ना हो, अंदर जो है वो कोई गड़बड़ पाई जाए, तो ये चीज जो है वो आगे जाकर इंसान को बर्बाद कर देती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है सालिक के लिए, खासतौर पर शायर सलूक के लिए, मानवियत के लिए, इंसान जो है वो अपनी तरबियत करता रहे, इंसान देखे कि कहाँ गड़बड़ है कहाँ नहीं है। बहरहाल ये किताब मुसलसल जो है वो, अभी तो हम लोग 44 पेज पर हैं और ये किताब जो है वो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको आखिरी सफा बता दूंगा ताकि आपको भी हिम्मत जो है उतनी बुलंद रखनी पड़ेगी, और हमारी भी कोशिश तो ये है कि बहरहाल जो है वो ये जल्द से जल्द जो है वो 415 तकरीबन जो है वो सफे हैं, तो इंशाल्लाह हिम्मत मजबूत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल जो है वो हमें बहरहाल अपने लिए फायदा है और आपके लिए भी यकीनन इसमें फायदा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है उसका उर्दू वर्जन भी आ जाएगा ताकि आपके हाथों में उर्दू की किताब भी मौजूद हो। इंग्लिश तो मैंने पहले भी बताया कि इंग्लिश जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ये बहुत जरूरी है कि इंसान जो है वो आमादगी करे अपने अंदर, अपनी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता साफ करे, आहिस्ता आहिस्ता देखे और उसको पहले अर्जे करे उलमाए कराम की खिदमत में, असातीद की खिदमत में जो है, ताकि उसकी अपनी जो है वो तरबियत हो सके। हाज शेख हादी तेहरानी जो कि बहरहाल एक बहुत बड़े आलिम है, टाइम है और एक उसी दौर के अंदर जो थे वो गालिबन शेख मुर्तजा जाहिद का टाइम है, और यहाँ शेख आदि तैरानी जो थे वो हाथ मुकद्दस के नाम से बहुत मशहूर थे, बहुत अच्छे मजलिस पढ़ने वाले थे, मशहूर मेंबर था, बेहतरीन कलाम था, बेहतरीन मसाइब पढ़ा करते थे, और उस जमाने में उनके कम नजीर था कोई उनके जैसा कोई हो। इसी तरह बहरहाल उनकी जिंदगी में बहरहाल दिन में मामूल था कि एक दो मजलिस या स्पीच किया करते थे, और अक्सर जो है उनके पास वक्त नहीं होता था कि अगर कोई उनको दावत देता था तो। और बहुत बहरहाल अपने आप को महरूम आज आगा शेख मुर्तजा जाहिद के जो बहुत बड़े आरिफ गुजरे हैं उनके अखलाक के जलसात में जाते थे, उनके दर्स में शरीक होते थे, और वो हदीस पढ़ते थे। बहरहाल एक दफा यही हुआ कि आज शेख मुर्तजा जाहिद के दर्स अखलाक में है और वो एक हदीस पढ़ रहे हैं, रिवायत पढ़ रहे हैं, तो अचानक से आज मुकद्दस जो है अपनी जगह से खड़े हुए और लाइक दर से जाने लगे। शेख मुर्तजा जाहिद ने कहा कि अपनी किताब पढ़ते पढ़ते रुक गए और कहा कि वो खुदाफिशी करना चाह रहे थे। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि हाँ मुझे काम है तो जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहरहाल कहीं उन्होंने मजलिस पढ़नी थी या कहीं जाना था उन्होंने। तो आज शेख ने जवाब दिया कि थोड़ी देर बैठ जाओ फिर चले जाना। आज मुकद्दस ने दोबारा कहा कि मुझे जाना है आगा, मुझे काम है आगा। शेख मुर्तजा जो जाहिद थे वो थोड़ी सी उन्होंने मजाक के साथ और थोड़ा सा एक मानादार मुस्कुराहट के साथ आराम से कहा कि हर वक्त ये कहते हो कि काम है ऐ बेकार, बेकार हो जाओ मुकद्दस, यानी थोड़ा सा इस तरह मुस्कुरा के कहा। खैर आज मुकद्दस जो है उस दिन के बाद से जब जलसे से बाहर गए तो अजीब सी मुश्किलात जो है वो गैर आती उनको पेश आई, और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद नौबत यहाँ पे आके पहुंची कि सारी जो मजालिस और स्पीचेस किया करते थे सब खत्म हो गई और कोई उनको दावत नहीं करता था, कोई उनको बुलाता नहीं था कि आए। बहरहाल वो कि जब उनके पास टाइम नहीं होता था कि लोगों को कहें कि मैं आ सकता हूँ, इतना ज्यादा बिजी होते थे, अचानक से जो है वो सब खत्म हो गया और अब वो परेशान हो गए कि मैं इसकी इल्लत क्या हूँ। तो फिर अचानक से इनको याद आया कि जो उस्ताद शेख मुर्तजा ने कहा कि ये बोलते हो कि मुझे काम है बेकार हो जाओ मुकद्दस। तो बहरहाल फिर वो ये 2 माह तक कहते हैं उनकी ये रही, और अपने बहरहाल शेख की खिदमत में गए और उजरखाई की, और उसके बाद बहरहाल जो है वो उनकी हालत जो है वो बेहतर हो गई। शेख मुर्तजा जाहिद जो है वो इस तरह अपने शागिर्दों की तवज्जो जो है, यानी जब इंसान किसी चीज से हटाया जा रहा है, देखिए मजलिस पढ़ना है स्पीच करना वो भी ये काम नेक है, लेकिन बाज़ का नफ्स इतना अटैच हुआ हुआ है कि इंसान गुम हो गया है, उसके अंदर गुम हो जाता है। तो ये अपने शागिर्दों की इस तरह उन्होंने तवज्जो को उसकी तरबियत करते थे ताकि गैर आखरती जो भी अमल है, चाहे वो अम्र मतलूबी जैसे मेम्बर ही है, उससे उनका ताल्लुक जो है वो कम करे, इंसान को अटैच किसी चीज से नहीं होना चाहिए। बहरहाल जिंदगी में इंसान जो है वो अगली हेडिंग जो है वो किताब में है कि इंसान जो है वो जिंदगी में इंसान फेल भी होता है और इंसान जो है वो जिंदगी के अंदर गिरफ्तार भी हो जाता है, यानी इंसान नाकाम भी हो जाता है, मुश्किलात पड़ती हैं। अब ये कि इन सारी चीजों से कि जो जाहिरी तौर पर तो इंसान को डाउन कर रही है, जाहिरी तौर पर तो इंसान को गिरा रही है, लेकिन इससे पॉजिटिव फायदा क्या उठाए इंसान, इन सारी चीजों से क्या चीज ड्राइव करे जो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बहरहाल आगा तहरीर फरमाते हैं कि अगर मुसीबत और गिरफ्तारी जो इंसान के आलम में है, इंसान उसमें बहरहाल दो चार है मुश्किल के अंदर, और जितनी भी मुश्किल हैं वो दो उसकी वजूहत हो सकती है। एक तो ये है कि सख्ती हो उसकी जिंदगी में, फिशार हो, परेशानी में हो, यहाँ तक कि बहरहाल मुसीबत जो है वो खुदा जो है वो हकीम है, वो इरादा करता है कि वो इसके जरिए से अपने बंदे मोमिन को जो है वो देखे कि जो उसको वो मुसीबतें दे रहा है, नाकामियां दे रहा है, उसको चेक करना चाहता है बरोदा, और फिर अगर वो उसमें पायदार रहता है यानी मोहकम रहता है, खड़ा रहता है, इस्तकामत दिखाता है, कामयाब होता है उस इम्तिहान में, तो बहरहाल खुदा की तरफ से फिर उसको एक रिजल्ट मिलता है, उसको अजर मिलता है जो साबिर और मोहसिनों को जो है वो दिया जाता है। और बहरहाल फिर इंसान जो है एक मरतबा आली की तरफ, यानी एक मरतबा अब जो है वो इर्तिका यानी अपलिफ्ट हो जाता है। और इसको कुरान करीम जो है इस हकीकत को इस तरह बयान करता है, सूरह हदीद की आयत नंबर 22 और 23 में परवरदिगार जो है वो इरशाद फरमा रहा है कि मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबर्रहा इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर। कि कोई भी मुसीबत जो है वो जमीन पर या नफ्स पर तुम्हारे नहीं आती, मगर यह कि पहले से जो है वो उसको जो है वो किया जाए कि जो किताब के अंदर है, यानी पहले से जो है वो चीज मौजूद है। ये काम खुदा के लिए आसान है कि तुम जो है वो गमगीन ना हो, तुम्हारे हाथ से कोई चीज ना जाए, और तुम जो है और तुम्हारे जो है वो कोई चीज तुम्हें जीत ना दी जाए और तुम जो है वो उस पर खुश ना हो। यानी ये काम खुदा के लिए कोई काम, ये काम खुदा के लिए आसान है, खुदा के लिए ये काम मुश्किल नहीं है कि तुम्हें गमगीन ना करे और सारी चीज ना करे। लेकिन बहरहाल वो खुदा की मसलियत है, खुदा चाहता है। और जितनी भी इंसान के ऊपर प्रेशर है, जिंदगी में नाकामियां हैं, मुसीबतें हैं, ये जो है इसमें इंसान अगर शिकवा ना करे, और मोमिन का दिल तो वैसे भी जो है वो खुदा की तरफ निगाह करता है। असल में ये सारी चीजें इंसान को डाइवर्ट करने के लिए खुदावंद मुताल की तरफ। जब आप देखें कि कहीं पर रास्ता बंद किया जा रहा है, धकेला जा रहा है, समझ लें कि आपको एक तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। जिंदगी की मुसीबतें इंसान को मुख्तलिफ तरीके से पैक करती हैं, परेशान एक तरफ से, कहीं नाकामी एक तरफ से, कहीं यानी उसको डायरेक्ट कर रही होती है किसी एक तरफ। अब जो है वो अगर मुतवज्जा हो जाए कि ये खुदा की तरफ से और ये है हिदायत है, जैसे सूरह तगाबुन में आयत नंबर 11 में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बहू। कोई मुसीबत जो है वो बगैर खुदा की इजाजत के नहीं आती है, और जो भी खुदा की तरफ देखता है और खुदा उसके दिल की हिदायत देता है। अगर इंसान मुतवज्जा हो जाए इन मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां, फौतगी, इंसान ज़्यादा डेथ हो जाती है किसी के चाहने वाले की, इंसान फाइनेंशियली किसी मुश्किल में पड़ जाता है, इंसान किसी हादसे का शिकार हो जाता है, बहरहाल औलाद का गम है, वालदैन का गम है, ये सारी चीजें बहरहाल इसने लाई है, मौत इसने लाई है। आप ये नहीं कह सकते कि मौत ना हो, बहरहाल हादसे गमनाक होते हैं, इंसान के लिए मुश्किल होता है कि अपने अपनों से ताल्लुक को तोड़ना, वो नेचुरल है, होना भी चाहिए। लेकिन इंसान खुदा के इज़्ज़त से ही, खुदा जानता है इन सारी चीजों को, ये काम हो रहा है। और जो भी जाहिरी तौर पर भी इंसान पर मुझसे मुसीबत होती है, चाहे वो पाते हैं, उसमें हिकमत है खुदावंद मुताल की। खुदा हकीम है, खुदा चाहता है कि इम्तिहान ले और देखे कि किस लेवल पर सामने वाला जो है वो सब्र करता है, किस तरह वो जो है वो अमल करता है। और बहरहाल बहरहाल इंसान जो है वो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, सब्र और रास वल ईमान, सब्र जो है वो ईमान की असास है। उस तरह अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं, सब्र है तदरकुल मआलिल उमूर, में सब्र के वास्ते से ही इंसान जो है वो आली उमूर पर जो है वो पहुंचता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी तुम्हें मुसीबत पड़े तुम ये को अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, यानी हर हाल में खुदा ने मुताल की हम्दो सना है। और सब्र जो है वो इंसान के लिए आसानी पैदा करती है, और एक ऐसा दरवाजा उसके ऊपर खोलती है कि शायद उसको अंदाजा नहीं होता। बहरहाल वक्त हमारा आधे घंटे का जो तकरीबन खत्म हो गया, बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं यहाँ तक बहरहाल कम से कम इम्तिहान इलाही के इसको जो है वो अख्ताम पे पहुंचा दूंगा भारत, ताकि जो है नेक्स्ट गुफ्तगू आइंदा से है वो दूसरे मौजूद की तरफ हम बढ़ सके। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बारे फरमाते हैं कि इंसान जो है वो मुसीबत में जो है वो मखसूस जो है वो खुदा ही है कि इंसान जो है वो उसको मुसीबत में करार, और खुदा जो अगर चाहता है तो मुसीबत को उसके लिए बड़ा भी कर सकता है और नहीं भी, इसलिए कि इंसान जब तक बाज़ोगात इंसान मुसीबतों गिरफ्तारियों में और रूह की खास तौर पे जो मुश्किल है उसमें फंसा हो, तो ये खुदा की तरफ से इम्तिहान होता है। अगर इंसान साबित कदम रहे इस रास्ते पर तो उसको एक अगला मरला मिलता है, और यही जो है वो वसीयत भी है इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी सबर करता है खुदा के मामलात में जो भी उसके साथ खुदा से करता है तो खुदा उस तक पहुंचता है। बस जो आरिफ होते हैं और जो जिन्होंने परवरदिगार के साथ अपने दिल को लगाया हुआ होता है तो ना उनके ऊपर सिर्फ बलाएं आती हैं बल्कि वो खुद उनके इस्तकबाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी खुद बहरहाल वो चाहते हैं कि मुसीबतें अगर उनकी तरफ आए तो खुद बढ़ते हैं, ना कि भागते हैं ना कि पिछड़ते हैं। जैसे जब आप किसी से मुलाकात चाहते हैं, आप किसी को बहुत चाहते हैं तो आपको पता है कि सीढ़ियां हैं, बिल्डिंग बहुत ऊंची है या पहाड़ की चोटाई है, लेकिन अब सख्ती के साथ जाना है तो आप ये नहीं कहते कि मैं यहाँ खड़ा रहूँ सामने वाला नीचे आएगा, बल्कि आप कहते हैं नहीं मैं तेजी से चाहे मुझे सख्ती बर्दाश्त करे मुझे उसकी तरफ बढ़ना पड़े। वो बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान जो है वो अपने महबूब की मुलाकात के लिए जो है वो स्टेप्स को इन सीढ़ियों को इन मुश्किलात को तय करता है, जिसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार ने जो वही की इजा रहे तो फकर जब तब तुम ये देखो कि तंगदस्ती तुम पर आ गई है यानी फकर तुम पर आ गया है तो फिर ये कहो कि मरहबन बिशुआर सालहीन, यानी तो जो सालहीन का शुआर है उसके ऊपर मरहबा को। अलबत्त ये है कि ये मुसीबतें तो और छुपे हुए दर्द और ये साफ और नुकात उसके लिए मुजाहदत की जरूरत है, जहाद की जरूरत है, और हर नाकामी या हर तलखी या हर हादसा जो है वो इंसान को जो है वो लेके जाता है कमाल की तरफ और हर शिकस्त जो है वो उसे खुद कहती है। बाज औकात बहरहाल इंसान जो मुसीबतों में गिरफ्तार होता है जिंदगी में, एक और अजाबिया भी है कि सूरह निसा में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि वमा असाबका मिन सैयातिन फमिन नफ्सिक, जो भी बुराई तुम पर पहुंचती है वो तुम्हारी अपनी तरफ से है। और यहाँ पर जो है वो बहरहाल कानून है कि इंसान जो है वो हदीस में भी है बहरहाल उसूल काफी में भी है कि कोई भी मुसीबत तुम्हारे गरेबान में नहीं आती मगर के उसमें तुम्हारी खता हो या तुम्हारी गुनाह हो। अब ये कि बहरहाल दोनों तरफ से बात आदि से यहाँ पर जाहिर तौर पर वो नहीं है, लेकिन ये है कि हर मामला में जब इंसान खुदा ना खास्ता खता भी करता है, खता भी होती है, खुदा अगर मुसीबत डाल रहा है तो खुदा उस खता को कवर अप करना चाह रहा है, उसके उसकी मुश्किलात को इंसानी में दिखाता है ताकि वो उसके साथ साथ ना रहे या वो मजीद खताएं ना करे, वो जहीर उससे मजीद उससे कोई ऐसा काम ना हो कि जो खुदा की बारगाह में ऐसा हो। खुदा बाज़ औक़ात चीजों को दिखा देता है, अगर गलत किया है तो गलत हो जाता है, उसकी वजह क्या है कि ताकि ये संभले ताकि ये रुके देखे। बहरहाल हर मामला में खुदा की तरफ से इम्तिहान का आना, इंसान के अमाल की तरफ से इम्तिहान आना, दोनों तरफ से तय कर कर इंसान अगले मरहले ही पर ही जाता है। मरहूम हाज शेख रजब अली खयात तुनगोयान के जो रजब अली खयात के नाम से मशहूर थे, टेलर थे, उनकी जो जमीर था वो बहुत रोशन था, उन्होंने अपने मुराकबा इतना किया हुआ था, जो बहरहाल उनका बरनामा था खुदा ने मुताल ने उनके कल्ब के ऊपर बहरहाल रोशनी डाली हुई थी, और उस्ताद बुजुर्ग अखलाक जो है वो तहरीरी के वाले साहब आयतुल मरूम आज शेख महमूद तहरीरी जो है वो बयान करते हैं कि एक दफा रजब अली खयात जो है वो सड़क से गुजर रहे थे तो चार पाए में से कुछ जानवर था एक गाड़ी के साथ जो गुजर रहा था और ये उनके पास से गुजरे तो उस हैवान ने अपनी टांगों को जो है वो शेख की तरफ किया, शेख जो है वहीं किनारे पर बैठ गए और सोचने लग गए कि उनसे कौन सी खता हुई है कि जिसकी वजह से ये हैवान जो है वो खुदा का आफरीदा है इसने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, टांग जो है वो उसकी तरफ है। जब बहरहाल उन्होंने बहुत सोचा तो बहरहाल उसके बाद वो इस्तग़फ़ार और बहरहाल बहरहाल फिर आगे की तरफ से बाद होगा कि बहरहाल वो जहन में ऐसी चीज जो नेगेटिव थी बहरहाल तो वारिफ थे, लेकिन बहरहाल कोई ऐसी चीज जो मनफी थी जिसकी वजह से जो है वो शायद खुदा जो है वो तामूल देना चाहता है, खुदा जो है वो एक जो है वो इंसान को एक समझ लें कि इशारा देता है कि देखो कि तुमसे कोई गलत हो रहा है या तुम कहीं गलत सोच रहे हो। शेख रजब अली खयात जो है वो बहता वो दूसरों की जो मुश्किलात में जो फंसे होते थे उनको उनको तवज्जो दिलाते थे और एक शख्स जो है एक दिन आया और उसका सर पर कोई चोट लग गई या पता नहीं क्या हुआ। शेख के पास आया, उसका उसका रीजन पूछा कि क्या वजह है। तो कहा कि तुम जहाँ काम करते हो वहां तुमने एक बच्चे को अजियत की है, अगर उसको राजी नहीं करोगे तो ये कंटिन्यू रहेगा, नहीं तुम्हें चोटें लगती रहेगी। और फिर उन्होंने बहरहाल उनकी बात को तायद किया, कारखाने में किसी एक बच्चे को जो भी वहां काम करता था उसको अजियत करते थे या शख्स तकलीफ करता था। शेख फरमाते हैं कि खाम खा मुश्किलात तुम्हें नहीं आती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि खाम खा तुम्हारे पर कोई ना कोई चीजों की जो है वो मुश्किलात आती हो। और बताओ वो ये कि इंसान मुसीबतें जो इंसान पर आती हैं, मुश्किलात अमली है, अखलाकी है, बाहर वो तरबियत की वजह से है, वो बरतरफ हो जाती है और ये मुसीबत जो है मुसीबतें उन पर आती रहती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा कोई शिया नहीं है कि जो हमने उसको कहा है उसको नहीं करे, मुर्तकिब हो और मर जाए, मगर ये कि उसके ऊपर कोई ना कोई गिरफ्तारी आएगी, या माल में आएगी, या उसकी औलाद में आएगी, या खुद वो किसी गिरफ्तारी जिंदगी में मुश्किलात का शिकार होगा, ताकि जो उसके गुनाह है वो खत्म हो जाए और खुदावंद मुताल से जब वो मुलाकात करे तो उसके ऊपर कोई गुनाह ना हो। बाद गुनाह जो है रह जाते हैं, लेकिन इंसान जब मर रहा होता है उसके ऊपर उस वक्त इतनी सख्ती होती है, तो ये गलतियां गुनाह जो है उसके साफ हो जाते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि कोई भी मुसीबत और मर्ज यानी रंज, परेशानी, हुज्न जो मोमिन पे नहीं आता, यहाँ तक कि उसने अपनी फिक्रों को कहीं मशगूल ना किया हो यानी बिजी ना रखा हो, मगर ये खुदा उन मताल जो है वो उन सबको जो है वो गुनाहों से पाक करना चाहता है। खुलासा, मैंने पहले भी अर्ज किया कि मुश्किलात परेशानियां अगर इंसान की अपनी वजूहत की वजह से भी हैं तो खुदा उसको साफ करना चाहता है। खुदा जो अब ये निगाह अगर इंसान रखे सालिक इस मानवी राह में, तो बहरहाल उसको अपने आप को सारी चीजों से, ताल्लुकात से दूर करना पड़ेगा और तफक्कुर के साथ जो है वो इस आलम के अंदर जो चीजें वाकई हो रही है तो हासिल होता है। देखिए इंसान को बहुत ज्यादा जूम होकर अपनी जिंदगी के मामलात को देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। बहरहाल अब अगला हिस्सा जो है वो दुनिया के आलम में तदब्बुर का है, और बहरहाल उसके बाद जो है वो तवक्कुल है, और तवक्कुल की बहस के बाद जो है वो फिर हम असल और जो तवस्सुल है कमाल के लिए पहुंचने के लिए, और फिर बादल तवस्सुल के साथ इसके बनाए, तो थोड़ा सा थोड़ी सी गुफ्तगू आगे कहीं मुश्किल है कहीं आसान है, लेकिन बहरहाल सिलसिला जो है वो जारी और सारी है इंशाल्लाह। बहरहाल खुदा की बारगाह में दुआ गो है, परवरदिगार हमें जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बहरहाल जिस मकसद के लिए हमने दरस दुरुस को शुरू किया, खासतौर पर जो भी दोस्त अहबाब खासतौर पर मुबशर और बाकी उनकी जितनी भी टीम है, इन दर्स को मुख्तलिफ दुरूस को असातिज़ के साथ इसको कंटिन्यू कर कर जो है वो चल रही है कि बहरहाल एक खुद ये इस्तकामत है, खुद एक साबित कदमी है, खुद एक मकसद और जहत है, ताकि उलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम जो है वो दुनिया में बहरहाल नशर व इशाअत हो और एक बेदारी पैदा हो और मुख्तलिफ जावियों से इंसान अपनी तरबियत कर सके और वक्त इमाम की नुसरत के लिए जो है वो कदम बढ़ा सके। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
माशाल्लाह जी, जो लोग सवाल कर रहे हैं अपना सिटी मेंशन कर लीजिए। जी जारा,
अस्सलाम वालेकुम मौलाना। मैं जब भी कोई सवाल सोचती हूँ उससे पहले ही वो सारे आंसर्स आप दे चुके होते हैं, तो फिर वो सवाल ही रह जाता है। यानी पूरी उस मैसेज में वो बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। मैं थोड़ा सा अपना तारीफ करा दूँ, वो मैं थोड़ा सा जरूरी समझती हूँ। मैंने आपसे ऐसी चीजें सीखी हैं कि मैं यकीन भी नहीं कर सकती थी मेरी जिंदगी इस तरीके से बदल भी सकती है। बस मुझे लगता है कि एक इरादा होना चाहिए और कोई कोई एक शख्स होता है जो आपको किसी जगह पहुंचा देता है, वो आप थे। और पूरे मुहर्रम मैंने जो आपको सुना उसके बाद तो मुझे लगा कि मैं जो अल्लाह से बहुत दूर थी वो करीब आ गई, اور آپ کے بعد آپ کو سن کر پھر اس کے بعد امام سجاد جو آپ نے ہی کہا کہ صحیفہ پڑھو, اور اس کے بعد تو لگا جیسے امام نے اتنی مشقتیں اٹھائیں, لیکن وہ صرف ہمارے لیے دعا کر رہے تھے اور انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ صرف ہمارے لیے تھا. تو میں جب اسے پڑھتی تھی تو مجھے لگتا تھا جیسے میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے مجھے تو لگا جیسے میں اللہ اپنے اللہ کے سامنے ہوں بالکل, یعنی میں اس سے بات کر رہی ہوں. اور پھر آپ نے ایک دفعہ کہا ایک مجلس میں کہ ہمیں اللہ ہم سے بات کرتا ہے, قرآن کھولو. تو جب بھی مجھے کوئی سوال ہوتا تھا تو میں قرآن سے میں بس میں ارادہ کرتی تھی, سوال پوچھتی تھی اور مجھے خود بخود آنسر مل جاتے تھے اللہ کی طرف سے. تو مجھے آپ کی وجہ سے ایک نئی زندگی ملی ہے, اور مجھے احساس ہوا کہ گناہ بندہ کرتا ہے, گناہگار ہوتا ہے, لیکن اگر وہ ارادہ کر لے تو اس کی سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم جو اتنے گناہگار لوگ تھے, یعنی میں اپنی ذات کو بولوں گی اور یہ بھی بات آپ ہی نے سکھائی ہے, آپ ہمیشہ اپنے اوپر اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کہوں گا کسی اور کو نہیں, تو آپ نے سکھایا ایسے. بہرحال I'm sorry, میں اموشنل ہو رہی ہوں. تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ایک پکے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب وہ ارادہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اپنے اللہ کے سامنے بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اس کے دوست ہیں. بس وہ ارادہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے, گناہ سے دور ہونا. آپ کی وجہ سے آپ نے مولانا, میں پہلے بہت زیادہ یہ ڈرامے اور یہ سب چیزیں, گانے اور ان سب میں بہت زیادہ ملوث تھی, لیکن اب میرا اس طرف جانے کا دل ہی نہیں کرتا. مجھے نفرت ہوتی ہے ان لوگوں سے, ان چیزوں سے, ان کاموں سے جس میں مجھے یہ احساس ہو کہ یہ گناہ ہے, میرا دل ہی نہیں کرتا. اور مولانا شکریہ آپ کا بہت زیادہ کہ یہ محرم جو گزرا تھا آپ نے میری پوری شخصیت کو تبدیل کر دیا. بہت بہت شکریہ,
بہت شکریہ. بہرحال یہ سب جو ہوتا ہے وہ اصل تو ہم آگے کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ جو بہرحال عالم میں ہے وہ پروردگار کا ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ جو رحمت موصولہ ہے, یعنی ایک کنٹینیوس جو رحمت ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, کیونکہ بہرحال ہم سب وسیلے ہیں. اس طرح بہرحال ایک اپلیکیشن کے ذریعے سے ہم درس دیتے ہیں, تو اصل اپلیکیشن تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہے. اپلیکیشن شاید ویسے بھی کھول کے رکھے تو کچھ نہیں کرے گی, لیکن جب اس میں یہ درس ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر افادیت رکھتا ہے, تو بہرحال اس کی بھی اہمیت تبھی ہو جاتی ہے کہ جب یہ درس اس سے ہوتا ہے. اسی طرح ہم بھی ایسے ہیں, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یا میرا اپنا ذاتی طور پہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال سب جو ہے وہ پروردگار کا ہے. پروردگار انتخاب کرتا ہے, پروردگار اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ نہیں چاہتا اس نے اپنی مخلوق کو خلق کیا ہے مخلوق جو ہے وہ غلط راستے پر جائے یا کچھ کرے. بہرحال وہ کسی نہ کسی حوالے سے, کسی نہ کسی وسیلے سے نوک دیتا ہے, کہیں نہ کہیں کٹکھٹاہٹ دستخط ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بہرحال انسان متوجہ ہو جاتا ہے. آپ کا قلب پاک ہے, آپ سب کا قلب پاک ہے, اور یقیناً جب انسان کا قلب پاک ہو اور اگر دنیاوی دھندلاہٹ آ بھی جائے تو خداوند متعال اس کو ایک لمحے کے ذریعے سے, ایک شعاع کے ذریعے, ایک گفتگو کے ذریعے, ایک بات کے ذریعے, ایک مجلس کے ذریعے, کسی بھی بات کے ذریعے سے, کسی شخص کے ذریعے سے, کسی حادثے کے ذریعے سے اس زنگ کو, اس آلودگی کو دور کر دیتا ہے. تو دنیا کی رنگینیوں میں گما بتا, اگر تو مجھے نہ بچاتا تو شاید میں اپنے آپ کو نقصان دیتا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے, اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کے لیے مزید جو ہے وہ معنویت کے دروازوں کو کھولے.
جزاک اللہ. السلام علیکم. جی سٹی مینشن کر دیجیے گا.
جی میں لاہور سے بات کرتی ہوں. مجھے پوچھنا تھا کہ کرپٹو کرنسی, ایک تو اس کا فرسٹ پارٹ یہ کہ جائز ہے یا نہیں ہے, اور دوسرا پارٹ یہ کہ کرپٹو کرنسی اگر آپ خود سے نہیں خرید رہے ہیں لیکن کوئی ایسے انٹرپرینور ہیں جو کہ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے آپ جاب کر رہے ہیں ان کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, تو کیا وہ جاب بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟
सवाल आपका बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ सब्जेक्ट है, लेकिन बहरहाल खुलासतन मैं आपको जवाब देता हूँ कि फिलहाल जो बड़े महाराजे जितने भी हैं वो इस मामले में खामोश हैं। यानी खामोश से मुराद है कि उनकी तरफ से कोई फतवा नहीं आया, तो जब तक कोई चीज नहीं आई है तो फिलहाल आप जो जो कर सकते हैं, जाहिर कोई भी चीज अभी तक जो है वो मेन जो महाराज है उनकी तरफ से कोई चीज ऐसी ममानियत की या क्रिप्टो करेंसी की जो है नहीं, क्योंकि खुद बहरहाल अभी ये खुद मौजूद जो है वो अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, मुबहम है कि करेंसी की बेस क्यों ना क्योंकि बहरहाल किसी न किसी चीज पर होती है, किसी न किसी की वैल्यू के ऊपर करेंसी प्रिंट की जाती है या जो भी है। तो बहरहाल अभी ये नया डूब है और दुनिया जो है उसकी तरफ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो जाहिरन जो है वो माइनिंग भी जो है वो हो रही है और सारे काम हो रहे हैं। तो फिलहाल इसके ऊपर कोई बहुत स्ट्रेट या कोई ऑथेंटिक रूलिंग आई नहीं है, तो जब तक नहीं आई है तब तो तारण कर सकते हैं फिलहाल। जी
अस्सलाम
सलाम
आलीन फातिमा रिजवी बात कर रही हूँ इस्लामाबाद पाकिस्तान से।
जी
थोड़ा सा रेलेवेंट सवाल ही है हकीकत इल्म के हवाले से, उस पे आपकी राय मैं जानना चाहूँगी कि एक तो इल्म है जो हम मुअल्लिम से लेते हैं, फिर कुछ मैं बहुत एक छोटा सा मुताला मैंने किया हुआ है जो मुला सदरा की किताबे मशायर का, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है मुशाहिदा और मुकाशफा, तो वो भी इल्म की अकसाम में उन्होंने उसको डाला है, तो उस पे मुझे आई जस्ट लाइक योर इनपुट ऑन दैट। बस मुख्तसर सवाल यही है। बहुत शुक्रिया आपने दर्स के लिए टाइम निकाला और बहुत एक हम लोगों को इनलाइटन किया। इल्तमास दुआ।
वो हमारी जो गुफ्तगू बहरहाल चलेगी और आगे चलेगी उसके अंदर ये इल्म जाहिर है आएगा, क्योंकि असल जो है वो
आगा आपकी वॉइस बार बार डिस्कनेक्ट।
जी
आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है आगा बीच में।
डेटा
आप डेटा यूज कर सकते हैं मोबाइल का?
हेलो
जी आवाज आ रही है अभी।
आवाज आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि भारत जो हम अभी गुफ्तगू आगे करेंगे उस पर यकीनन जो है वो इल्म पर गुफ्तगू है, इल्म के मराइल पर, और जो भारत आपने जो जिक्र किया जो मुल्ला सदरा की किताब से आपने जो बयान की कि इल्म की मुख्तलिफ किस्में, इल्म हकीकी क्या है, इल्म कश्फ जो करते हैं वो है, मुशाहिदा हो गया या शहूद जो है वो, यकीनन इल्म के अपने जो है वो दर्जात हैं, लेकिन जो है वो हर चीज हर किसी के लिए नहीं है और हर आदमी जो है वो अपने लेवल पर जो है वो चीजों को कस्ब करता है, बाज़ औक़ात ज़ाहिर से करता है, बाज़ औक़ात उस इल्म की हकीकत की तरफ जानता है, या हकीकी इल्म क्या है और हकीकी इल्म किसे कहते हैं। तो ये हदीस का बरले किस्सा मैं आपसे बयान करके उसको आगे की तरफ बढ़ूंगा कि इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे तो ये सारी चीजें के अंदर स्टेप बाय स्टेप आएंगे, कुछ चीजें बहुत आगे की हैं उसको पहले बयान कर देना थोड़ा सा शायद मेरे लिए शायद मुश्किल हो। एक तो ये कि इल्म जो है वो इमाम जाफर सादिक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं कि इल्म जो है वो नूर है और खुदा जिसके दिल पे चाहता है इस नूर को उतार देता है। अब वो जो दिल है वो कैसा होना चाहिए, उसकी शायद क्या होनी चाहिए, वो यकीनन वो भी इसी हदीस के अंदर है और इंशाल्लाह हम उन मराहिल को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तय कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी जो है वो तय करेंगे।
जी फैसल
अस्सलाम वालेकुम
वसलाम
मौलाना जी।
जी वसलाम,
एक सवाल था मौलाना साहब मेरा कि
आप कहाँ से
कोई
बात कर
शख्स,
रहे हैं?
मैं बिजनौर से बात कर रही हूँ इंडिया, कि जो
जी
शख्स शख्स सैयद हो और उसके पास उसका शजरा मौजूद ना हो तो उसका क्या हल है, मतलब वो किसी को कैसे यकीन दिलाए कि वो सैयद है। मौलाना साहब इसका जवाब दीजिए।
इसका मैं क्या जवाब दूं, आप मुझे खुद बताएं। आपके सवाल में जवाब है, जिसके पास शजरा नहीं है वो किसी को यकीन कैसे दिलाए कि वो सही है? कैसे यकीन दिलाए? अगर जहां जरूरत है दिलाए, जहां जरूरत नहीं है ना दिलाए, जाहिर है इसका कोई हल तो नहीं है। और आप जो है वो खुदा की बारगाह में, इंसान जो है वो मयार तकवा है, तो बाहर इंसान तकवा इख्तियार करे, अपने अमाल को अच्छा करे, तो बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं।
जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। रजानी, कोमल, नताशा, इसरार जी, नताशा, इसरार सवाल पूछिए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं प्राचीनार से ताल्लुक रखती हूँ लेकिन मैं अभी इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। कुछ पूछना था आपसे।
जी पूछिए।
सर मेरी जो है 1 साल पहले पोपो से एक तरह की लड़ाई तो नहीं हुई थी लेकिन बातचीत हुई थी। उसमें मैंने पोपो को मतलब कहा था कि अगर आप हमारे घर के मामलात में दखल ना दे तो अच्छा होगा। तो उस पे उसने मुझे मेरी माँ को याद किया ना, मैं जब 6 मंथ्स की थी ना उसने मेरी माँ को गाली दी ना, मतलब कि उस टाइम मतलब उनके साथ लुक अच्छी नहीं हुए उनके, तो उन्होंने को खुदकुशी कर ली ना। तो अभी तो मुझे वजह नहीं पता कि किस वजह से किया उन्होंने खुदकुशी, लेकिन जब मैं उस टाइम उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने मेरी अम्मी के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। और ये मामला जो है वो चलता रहा कुछ महीनों तक और मेरी साइड सिर्फ मेरी बाई ने ली और घर में किसी ने मेरी साइड नहीं ली। मेरे अबू ने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी और ना ही मुझे बताया कि आप जो है, या डांटा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम बचपन से ही रह रहे हैं हमने अपने कजन्स के साथ ना, तो उन मामलात सारे जो मामलात है ना उसमें मुझे सिर्फ बाई ने सपोर्ट किया। तो जो मेरी बड़ी पोपो है ना, तो उसको उस टाइम उनका ऑपरेशन हुआ था तो मैंने उनको ये बात नहीं बताई कि आपकी बेटी भी मेरे से बदतमीजी करती है। तो मैंने उनको ये बोला था कि अब जब भी आपकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपकी माँ को ये शिकायत लगवाऊंगी। तो उनकी उनकी माँ ने रात को मुझे कॉल की और ऊपर से उसने मेरी माँ के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। बहुत ही गलत थी कि मैं आपकी माँ की कब्र के ऊपर पॉटी करती हूँ, जो खुदकुशी करते हैं उनकी कब्र के ऊपर पॉटी करती हूँ ना। जो दूसरी बहन ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो ये थे कि तुम्हारी माँ ने भी इतनी निकाली हुई थी ना, तो ये अल्फाज जो है मैंने उनको ये बोला।
जो लोग सवाल कर रहे हैं मुख्तसर सवाल कर लें अपना। जी
अच्छा मैं अकेली थी मैं, लेकिन मैं बदला नहीं ले सकी और उन्होंने इतनी चाल चली ना मेरे और भाई के दरमियान इख्तलाफ और मुझे मेरा भाई दूर हो गया। तो मुझे ये बताएं कि बदला तो ना मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, मैंने कि अल्लाह ही आपसे बदला लेगा, लेकिन जो अल्फाज उन्होंने मेरी अम्मी के लिए इस्तेमाल किए हैं तो मैंने उनसे ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं, उनसे मैं ना बोलती हूँ ना मिलती हूँ। क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ?
हाँ, बहरहाल बहरहाल देखिए, खुलासा ये है कि आपकी अपनी कोशिश होनी चाहिए अपने अखलाक से, किरदार से, लोगों के साथ बात करें, चाहे बाज अवकात बाहर लोग गलती भी करें, इज्तिमा भी करें, बहरहाल दरगुजर करें। और अगर बहरहाल आपको लगता है कि सामने वाले के अखलाक और चीजें आपके नफ्स को दबाती हैं या नफ्स के लिए मुनासिब नहीं है, तो बहरहाल फिर आप एक हद तक, एक लेवल तक जो है उनसे राबता रखें। लेकिन यह कोशिश करें कि तनाजा, इख्तलाफ और बहुत ज्यादा एक दिल में कर्ज पैदा होना हर वक्त जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये रूह के लिए मुनासिब नहीं है। और इंसान का बदन वैसे भी थोड़े अरसे दुनिया के अंदर है और दुनिया से चला जाएगा। बेहतर है इंसान जो इंसान के साथ गलत भी करे तो उनके हक में भी दुआ करें, उनके लिए इस्तग़फ़ार करें, खुदा की बारगाह में उनके लिए दुआ करें, परवरदिगार उन्हें भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे। इस जाविये से दुनिया को सोचें, जो दुनिया से चलेगा, खुदा उनको रहम करे, खुदा उनकी मगफरत करे। इस दुनिया से, इस जाविये से दुनिया को निगाह करें तो दुनिया और जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
जी अहमद अली जाफरी।
अस्सलाम वालेकुम आगा जान, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं?
बिल्कुल ठीक है, अल्लाह शुक्र।
अच्छा आगा जान, अली जाफरी अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान पंजाब जिला बखर से। खैर खैरियत से हैं आगा जान? एक थोड़े से एक चीज आपसे ना मालूमात के तौर पर लेनी थी। हम माशरे में अक्सर जो है ना बहुत ज्यादा कंजस्टेड भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी पाया जाता है, बहुत ज्यादा नरमी भी पाई जाती है, उलमा का खिंचाव अपनी तरफ से है। हमारा एरिया जो देसी टाइप है ना, सराय की पट्टी, उसमें ज़ाकरीन का खिंचाव जरा ज्यादा ही होता है। तो इस हवाले से बड़े शहर में जैसे आप खिताबात करते हैं तो वहाँ पे इल्मी रोशनी बहुत ज्यादा है, नौजवान माशाल्लाह इस चीज को समझते हैं, एक मरजियत या उलमा या इस तरफ एक पढ़ी लिखी सोसाइटी की तरफ रुझान रखते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारे एरिए में बजाय ये कि कोई आपको बुलाए, जैसे कोई इल्मी मराकज होते हैं या मसलन शिया उलमा कौंसल है या ISO है, इनके प्लेटफॉर्म से अब खुद कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि हमारे इन इलाकों में, जैसे मसलन हमारा मियांवाली हो गया, बखर हो गया, जंग हो गया, लिया हो गया, डी खान हो गया, इन एरिया में कोई ऐसा आप उलमा जो मंशूर बनाए कि खुद खिताबात करने के लिए खुद आए, बजाय इसके कोई आपको दावत दे। क्योंकि आगा जान जहाँ रुझान बिल्कुल नहीं है कि कोई आपको बुलाए, इस आस पे बंदा बैठा हो या किसी की आप तक अप्रोच नहीं होती। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म हो पंजाब सिंध इनमें कि देही इलाकों में कोई आप सालाना तौर पर कुछ दिन मुकर्रर करें, उलमा आप कौंसिल बनाए जो माशाल्लाह आप नए उलमा आए हुए हैं, तो इनमें कोई रवाबित ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता?
देखिए बात यह कि बहरहाल जरूरत हर जगह है और हर जगह मुख्तलिफ जगहों पर, चाहे वो पाकिस्तान के शहर हों या गर्दोनवा के इलाके हों या दुनिया के कोई मुख्तलिफ ममालिक हों या छोटी छोटी कम्युनिटीज हों, हर जगह बहरहाल मुख्तलिफ है। हमारी भी कैफियत देखिए वही है कि हमारे पास बहरहाल 365 दिन ही है, 365 दिन से ज्यादा तो हम भी खींच नहीं सकते, और 365 दिन के अंदर जाहिर है खुद भी तालीम भी हासिल करनी है और तालीम के साथ साथ जो है वो अपनी जो जिंदगी के मामलात है जो हमने बहरहाल असातीद ने हमें कहे हुए हैं कि उनकी तरफ भी मुतवज्जा होना है, और एक हद एक ऐसा जो है वो तबलीगात का है अय्याम का, जिसके अंदर बहरहाल हम तबलीगात कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। उन तबलीगात में जाहिर है जो है वो पाकिस्तान जो है वो बहरहाल जो है वो एक मुल्क है, फिर एक मुल्क के अंदर पाकिस्तान के सूबे हैं, फिर सूबों में शहर हैं, शहरों के अंदर फिर इलाके वगैरह, तो वो एक महदूदियत ही है। चाहे हम कोशिश करते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारे लिए भी हर जगह पहुंचना, मतलब फिजिकली पहुंचना, यानी वक्त को देखते हुए, महदूदियत को देखते हुए मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहरहाल 365 दिन पाकिस्तान में नहीं हूँ, यानी बाद उलमा है बहरहाल। अब वो बहरहाल हर किसी की अपनी प्रायोरिटी है और वो क्यों क्यों जाते हैं, अलबत्ता जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं वो बुलाते हैं, और जैसे बहरहाल आपने बखर का कहा तो बखर से भी इन्विटेशन तो बहुत है। अब ये है कि बहरहाल आया उसको हम एडजस्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये बाज़ूकात हमारे लिए फिजिकली या प्रैक्टिकली मुमकिन होता है या नहीं होता। कोशिश होती है कि हम वहां पहुंचे, लेकिन जो है वो जाहिरन जब इंटीरियर के अयाम होते हैं मुहर्रम सफर में जाहिर है पॉसिबल नहीं होता, बड़े शहर इतने ज्यादा होते हैं, छोटे शहरों को या टाउन को जो है वो अयाम के अलावा देखा जा सकता है, उसके अंदर भी कितना बंदा पाकिस्तान में है ये सब देखना पड़ता है। वो ये महदूदियत से ही हमें पता चलता है कि हम लोग नाकिस हैं, हम लोग महदूद हैं, और बहरहाल खुदा की बारगाह में है कि खुदा हमें तौफीक दे कि हम हर जगह जो है वो इन सारी चीजें, इसलिए बहरहाल दुरूस ऑनलाइन का सिलसिला इसलिए कि दुनिया में बहरहाल कोई कहीं में भी है वो इन चीजों का शिकार ना रहे और हर बात जो है वो हर जगह पहुंच जाए। लेकिन बहरहाल दुआ गो है परवरदिगार हमें तौफीक दे, बहरहाल आपके शहर में भी आए और बाकी लोग भी जो है वो आए और बहरहाल उलमा के साथ रूबरू होकर चीजों को हम भी सीखे और दूसरे लोग भी सीखे।
अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। अगर सर मेरे दो क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि मराकबा क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि दैट हम्बलनेस विच वाज इन ऑल ऑफ आवर आइमा तहरीन, जिनको हर चीज़ का इल्म था, जिनको ये भी पता था कि सबकिन कैसे, मतलब उनकी निशानियाँ क्या हैं, मोमिनों की निशानियाँ क्या हैं, सहाबी अमीन की निशानियाँ क्या हैं, वो सारी निशानियाँ उनको खुद पता थी, एंड दे वर सीइंग थ्रू दिस वर्ल्ड अनटिल यू नो जन्नत। उनको पता था कि कोई बंदा ये काम करेगा तो उसका रुतबा ये हो जाएगा, तो दैट हाइट ऑफ हम्बलनेस दे हैड, उनको पता था कि नमाज शब में खड़ा होने का result kya hoga. That height of iman and that height of humbleness they had, how one should stable that. Ki if you are in that path, of course main apni baat nahi kari, but I just want that vision, that jo jaan to unko beautiful jo final destination tha abhi ilm tha, matlab bhag bhi ilm tha. So that humbleness before Allah Pak, wo khubsurat humbleness aur wo iman ka level, which was, you know, when you are able to see your result and still you are struggling till your last breath. So I want your comments on that. Thank you.
दूसरा सवाल इतना आपका वो था कि पहला सवाल तो मैं भूल ही गया. दूसरा सवाल का मैं पहले जवाब दे दूं ताकि पहला सवाल मेरे जहन में आ जाए. पहला सवाल बहरहाल आपका मुराकबे में था. देखिए मुराकबा अपने लफ्ज से जाहिर है, यानी मुराकबा और मुहासबा दो अल्फाज जब हम इस्तेमाल करते हैं, यानी मुराकब होना यानी अपनी केयर करना, बच के रखना. और इंसान जो है वो बहरहाल देखता है कि वो जो क्योंकि मुहासबा करता है, मिसाल के तौर पर हिसाब करता है. क्या हिसाब करता है? आज उसने क्या किया, अच्छा कितना किया, बुरा कितना किया, ये अपना हिसाब करता है. नमाज अबल वक्त पढ़ी, कुरान कितना पढ़ा, किसी के साथ नेकी की नहीं की, खुदा नवाजता, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी के साथ गलत तो नहीं किया, वो भी हिसाब करता है. जैसे एक अकाउंटेंट जो है वो हिसाब करता है, चाहे वो डेली करता हो, चाहे वो मंथली करता हो, चाहे वो ऑडिट होता हो एनुअली, तो बहरहाल वो हिसाब किया जाता है, इतना नुकसान हुआ, इतना फायदा हुआ. अब ये नुकसान और फायदा जब इंसान देखता है, देखता है कि इस चीज से फायदा हुआ, इस चीज से नुकसान हुआ, अब वो क्या है कि वो नहीं करेगा कि जिससे नुकसान हुआ. तो ये कि अपने आप को नुकसान से बचाना और अपने आप को फायदा जिस चीज से हो रहा है उस पर गामजन रखना मुराकबा है बेसिकली. यानी अब आपने देखा कि कल मैंने फलाना काम किया, मुझे उससे नुकसान हुआ, फलानी जगह मैंने कुछ खाया, मुझे उससे नुकसान हुआ, फलानी बात की मैं, उसे मैंने महसूस किया कि ठीक नहीं किया, फलानी वजह से मेरी नमाज में ताखिर हो गई. खूब ये सारी चीजें, खूब इंसान नेक्स्ट डे क्या करता है, इन सारी चीजों से अपने आप को खुश करता है कि मैं ये ना खाऊं, ये ना करूं, ये बात ना करूं, इससे ना मिलूं, ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं. मुराकिब होना सादा सी डेफिनेशन इसकी यही है. बहरहाल वो फिर जब आप उसमें आते हैं सैर सलूक में, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल अपने लेवल की वजह से इंक्रीज होता है. दूसरी चीज के अहले बैत अलैहिस्सलाम और अइमा अलैहिस्सलाम खासतौर पर सारा इल्म जानते थे, सारी चीजें जानते थे, उसके बावजूद जो है वो खुदा की बारगाह में इस तरह. तो देखिए ये बिल्कुल ऐसी है कि जब इंसान की मारिफत बढ़ती चली जाती है, जब इंसान जो है वो उस लेवल को अचीव करता है कि बहरहाल जो कमाल बंदगी है, जो इंसान कामिल है, वहां जब वो पहुंचता है तो वहां पर पहुंच कर वो देखता है कि सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा के पास है, सब कुछ इसने इलाही है वहां पर वो. और फिर वो जब जलवा इलाही देखता है, जब वो तौहीद के असरार को देखता है, राजों को देखता है, तो वो झुक जाता है. जैसे कि आप देखें आइम सलाम मनाजात में, दुआओं में, मौला कायनात का जो है वो बहरहाल दुआ कुमैर के अंदर जुमलों का बयान करना, और खुद जो है वो खुदा के इश्क और मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होकर इतना ज्यादा गिरिया करना, और एक अजब कैफियत के साथ फजर की नमाज में अजान के वक्त पर पैगंबर सल्लम के चेहरे का रंग तब्दील हो जाना, यानी क्या है, यानी वो बुला रहा है कि जो खालिक है, जो मालिक है, वो जाहिर है वो जिस लेवल पर वो है उस लेवल पर उनकी मारिफत तौहीद की भी बहुत बुलंद है. तो उसी तरह जाहिर है वो जितना इंसान मारिफत बढ़ती जाती है उतना इंसान झुकता चला जाता है. खुलासा यही है कि वो बाबुल्लाह है, बाब तौहीद है, और जो है वो मौला कायनात का अपना जुमला ही परवरदिगार, अगर ये सारी चीजें जो है पर है, अगर ये गालिबन जो है वो 10 मिनट ऊपर हो गए हैं
जी. अगर सवाल लेने हैं,
एक सवाल और ले ले
जी. जी ब्रदर जका,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह.
किबला, मेरा सवाल है
कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि एक बड़ा मशहूर नोहा ब्लॉक हुआ है और सरकारी सतह पे पहले भी कुछ मजालिस भी ब्लॉक हो रही है। ऐसे में जो लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, क्या वो आजादारी से मुतल्लिक काम करना छोड़ दें या क्या करना चाहिए, जबकि उलमा की सतह पे बयानबाजी होती है जो लोग ये काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे मुसलसल।
जी बहरहाल मैं गुजारिश करूंगा, खैर आपका जवाब बहरहाल सवाल अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। ये कि बहरहाल गुजारिश यही है कि मेरी बहरहाल हमारा ये दर्स बड़ा मुख्तस है और ओपन फोरम यकीनन है, लेकिन जो है वो दर्स खास है, किताब से है और एक खास टॉपिक का है। अगर बहरहाल हम अगर इसको दर्स को और इसके रास्ते और हदफ को तायुन नहीं करेंगे, यही हमारे सबसे बड़ा फुकदान है एक इज्तिमा होने की वजह से, कि हम लोग तमरकुज और कंसंट्रेशन को डेवलप नहीं कर सकते। हम लोग इसलिए स्पेशलाइज नहीं बनते बहुत सारी चीजों के, उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ हर चीज बहुत स्कैटर्ड है और बिल्कुल ऐसी जैसे कि आप फिजिक्स के लेक्चर में आकर जो है वो आप जो है वो सवाल जो है वो बायोलॉजी का करें, यकीनन उस्ताद जवाब तो आपको देगा, आपको खाली नहीं जाने देगा, लेकिन खुद इस किताब के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आखिरी बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सवाल करने का है, इल्म हासिल करने के लिए। तो बहरहाल मेरी गुजारिश यही है कि बहुत दरमियान में सवाल आए, मैं एहतराम की वजह से जवाब दिया मैंने, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहरहाल मैं मॉडरेटर से कहूंगा कि वो कोशिश करें कि सवालात के लिए रिलेवेंट सवालात जो है वो पहुंचाए, वरना ये होगा कि हमें टेक्स्ट सवाल लेने पड़ जाएंगे। बहरहाल आपका जो सवाल है वो बिल्कुल भेजा है, दुरुस्त है और इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, अब बहरहाल उसके पीछे मुख्तलिफ अनासर हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, साजिशें हैं और मीडिया कंट्रोल करने वाली, बहरहाल आपको मैं पहले भी, बहरहाल अगर आप मजालिस और चीजें सुनते रहते होंगे तो यकीनन आप इन चीजों से वाकिफ होंगे। मैंने पहले भी अर्ज किया कई दफा कि ये जो बहरहाल मीडियम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये सारी चीजें जो है ये दुश्मन की इजाद है, यानी दुश्मन ने इसको बनाया है, उनके कब्जे में है, उनकी हकमियत है इसके अंदर। वो जब दिल चाहे जिस चीज पर एक तो पाबंदी लगा देते हैं, जब दिल चाहे वो ये कह देते हैं कि ये फलाने के खिलाफ है, ये फलाने के खिलाफ है। तो बहरहाल एक तो ये है कि बहरहाल ये मीडियम उनका है, अब ये कि बहरहाल हम उसको अच्छी तरह इस्तेमाल कितना कर सकते हैं, कब तक करते हैं, ये हमारे लिए प्रॉफिट है, यानी जितना हम कर रहे हैं वो आज वो बंद कर दें, अब क्या कर सकते हैं। वो किसी भी चीज को कह देते हैं कि वो चीज हमारी सोसाइटी के खिलाफ है, ये चीज हमारे कानून के खिलाफ है, आप उसके आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहरहाल उन्होंने बनाया, मीडियम उनका, स्पेस उनकी है, सर्वर उनके हैं सारे। पहली चीज तो पहली बहरहाल हम खुद अपने लिए चीजें बनाए। दूसरी चीज के बहरहाल हर मुल्क के बहरहाल अपने कानून है, कोई चीजें शायद वेस्ट के अंदर मुनासिब नहीं समझी जाती हैं, वो चाहे उनका अपना कोई बनाए उसको उड़ा देते हैं। इसी तरह बहरहाल पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अपने कानून है। अब ये जो कानून तर्रा कर रहा है ये कौन कर रहा है, पहले सवाल। दूसरा है कि कानून के हदूद क्या है, ये हर चीज को एक जुमरे में डाल रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि बहरहाल एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए, नहीं एक ऐसी जिस तरह खुद एक कैमरा हमारे पाकिस्तान में है चीजों कंट्रोल करती है, तो खुद एक उलमा इकराम शिया की और बहरहाल नोए खान हो जो भी हो, पर इसकी एक बॉडी होनी चाहिए जो कि बहरहाल एक गुजारिशात और एक जाब्ता अखलाक और सारी चीजों को तय करे कि किस तरह की वीडियोज मुल्क के लिए मुनासिब है, तशय्यों के लिए, इस्लाम की तरवीज के लिए क्या क्या चीज, उसको बहरहाल एक जाब्ता अखलाक होना चाहिए ताकि कल को कहीं और कल की कोई ऐसी चीज बनाए जो कि बहरहाल तशय्यों के खिलाफ हो, दीन के खिलाफ हो, तरवीज इस्लाम के खिलाफ हो, उसको रोके। इस तरह दूसरे फिरके का भी कोई और बनाए या कोई और मजहब का कोई और चीज बनाए जो कि नुकसान हो, बहरहाल इंसान जो है वो काउंटर कर सके और बात कर सके और चीजों को रोक सके। यकीनन इसमें आपकी बात दुरुस्त है, कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, और लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए कि बस हम चीजों को ना बनाए हदूद को बनाए, जो चीजें आपको रोकती हैं उनको थोड़ा सा चीजों को एडजस्ट करके अपने वजूद का बहरहाल इजहार करें और बहरहाल अपने सिस्टम की तरफ, अपनी वेबसाइट्स की तरफ, अपनी एप्लीकेशंस की तरफ जो है वो तवज्जो होनी चाहिए। بہرحال بہت شکریہ، خدا نے مطالعہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہے، پروردگار نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم بہرحال اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں، چاہے وہ درس سن کر ہو، چاہے وہ درس بیان کر کر ہو، عمل کر کر ہو، اور خدا ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہوں، ہمیں زیارات کی توفیق ہو، جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ والے بیت کے صدقے میں، جو پریشان عالم کی پریشانیاں دور ہوں، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح اور نیک علماء کرام راج کرام کو طول عمر سلامتی عطا فرما، جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں کہیں پہ بھی کر رہے ہیں پروردگار کی توفیقات میں اضافہ فرما، مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں کامیابی عطا فرما، اللہم ارزقنا زیارۃ الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرۃ، صلوات بھیج محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
بہت بہت شکریہ.